તારીખ 26/4/1997 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 161 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 170.
સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 161. મનુષ્ય જીવનના કર્તવ્ય સંબંધે ફરમાવવા કૃપા કરશો. મનુષ્ય જીવનમાં કરવા યોગ્ય શું છે? પ્રશ્ન એ સમાધાન. મનુષ્ય જીવનની અંદર ચૈતન્ય તત્વ જુદું છે અને આ પરદ્રવ્ય જુદું છે એવું ભેદ જ્ઞાન કરવાનું છે. આટલું કરી લેવું જોઈએ. આ સુધી પહોંચી જવું જોઈએ. ક્યાં સુધી પહોંચવું જોઈએ? જુદા પણ થાય ત્યાં સુધી પહોંચવું જોઈએ. કેમ કે બાકીનો વ્યવહાર તો એકત્વ બુદ્ધિ એ ચાલે છે. તો જુદાપણ ન કર્યું તો એ સિવાય જુઓ તો એકત્વ બુદ્ધિ એ બધી પ્રવૃત્તિ છે. પરદ્રવ્યમાં મારાપણું ચાલુ છે. મનુષ્ય થયો અને એ પણ ચાલુ રહ્યું તો મનુષ્ય પણ અને બીજા ગતિના જીવો દુર્ગતિના જીવો એમાં શું ફરક પડ્યો? એ પણ મારાપણું કરીને દુર્ગતિમાં ગયા. આ પણ મારાપણું કરીને દુર્ગતિમાં જશે. મનુષ્યપણું પામેલું નિષ્ફળ જશે. અંતરમાં વિભાવો સાથે એકત્વ બુદ્ધિ થઈ રહી છે તે તોડવાની છે. પરદ્રવ્યમાં મારાપણું છોડવાનું છે. અંતરમાં વિભાવો સાથે એકત્વ બુદ્ધિ થઈ રહી છે પરિણામમાં. આ 12માં છે. પરદ્રવ્ય છે એ 12માં છે. અંદરમાં જે વિભાવો છે એની સાથે પણ પોતાપણાની એકત્વ બુદ્ધિ થઈ રહી છે. એ પણ તોડવાની છે. હું જુદો ચૈતન્ય જ્ઞાયક છું. જ્ઞાન આનંદ આદિ અનંત ગુણ સ્વરૂપ આત્મા છું. તેના ઉપર દ્રષ્ટિ કરીને હું શાશ્વત ચૈતન્ય જોત છું એમ વારંવાર તેનું રટણ અને મનન કરવાનું છે. અથવા તો પોતે ભિન્ન જ્ઞાયક છે. અનંત ગુણનું નિધાન છે. શાશ્વત ચૈતન્ય છે એને સંભાળવાનું છે. મારા પણ એને સંભાળવાનું છે. બીજે મારા પણ મૂકવાનું છે અને જે પોતાનું સ્વરૂપ છે એને પોતાપણે સંભાળવાનું છે. ભેદ જ્ઞાન પ્રગટ કરીને નિર્વિકલ્પ તત્વ આત્મા છે તેની સ્વાનુભૂતિ પ્રગટ કરવાની છે. મનુષ્યપણામાં શું કરવાનું છે? મનુષ્યપણામાં વેદના સુધી પહોંચીને સ્વાનુભવ સુધી કામ કરી લેવું જોઈએ. શ્રદ્ધા થઈ ગઈ. શાસ્ત્રમાં પણ એ આજ્ઞા છે કે તું મુનિ દશાના ચારિત્ર સુધી ન પહોંચ તો શ્રદ્ધા તો અવશ્ય કરી દે છે. તારી શ્રદ્ધા નહીં ફરી હોય આપની મિથ્યા શ્રદ્ધા જે અનાદિની છે એમને એમ રહી છે, તો તારા પરિણામનું ઠેકાણું નહીં રહે. પછી અહીંથી જીવના પરિભ્રમણનો અંત આવવાનો નિશ્ચિત થઈ જાય છે. શ્રદ્ધા ફરી ગયો એટલે જીવનું પરિભ્રમણ પૂરું થઈ ગયું, થઈ ગયું ને થઈ ગયું. વિજ્ઞાન કરીને સ્વાનુભવ સુધી પહોંચી જાય એટલે અર્થ સુધી તો આવવું જોઈએ. મનુષ્ય પણ મળ્યું તો અહીં સુધી તો આવવું જોઈએ. ભેદ જ્ઞાન પ્રગટ કરી નિર્વિકલ્પ તત્વ આત્મા છે તેની સ્વાનુભૂતિ કરવાની છે. ગુરુદેવે જે બતાવ્યું છે તે કરવાનું છે. ગુરુદેવે આ બતાવ્યું છે. એક જ માર્ગ છે, માર્ગ તો ત્રણેય કાળે જ્ઞાનીઓનો માર્ગ, તીર્થંકરોનો માર્ગ તો એક જ છે. આત્મકલ્યાણનો માર્ગ બે નથી, ભિન્ન ભિન્ન ઉપાયો નથી, એક જ ઉપાય છે. શ્રીમદજીએ કહ્યું છે ને કે એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમાર્થનો, પરમાર્થનો તો એક જ પંથ છે ત્રણેય કાળે આત્મસિદ્ધિમાં. ન સમજી દીધું એમને તો 15 પેદે સિદ્ધ કયા છે. આત્મસિદ્ધિમાં તો એક હોય ત્રણ કાળમાં પણ પરમાર્થનો એક જ માર્ગ છે. બે માર્ગ હોય, પદાર્થ જો એક જાતિનો છે, આત્મા મૂળ પદાર્થ તો એક જાતિનો છે, તો એને પામવાનો માર્ગ જુદી જુદી જાતિનો એમ ક્યાંથી આવે? તો કોઈ વૈજ્ઞાનિક પરિસ્થિતિ રહેતી નથી, કલ્પના થઈ જાય. તો બધા પોતપોતાની કલ્પનાએ કામ કરવા માંડે. જુદી જુદી પર્યાયમાં સિદ્ધ પદ કઈ નિશ્ચિત થાય એવું કઈ નિર્ણય નિશ્ચિત થાય એવા કોઈ સંસ્કાર પડતા હશે એવું છે. સ્વરૂપ ના સંસ્કાર માર્ગ બે નથી, 15 તો હું, પણ બે માર્ગ પણ નથી. મને તો બહુ શરૂઆતમાં કહ્યું છે કે જગતમાં બે જૈન નથી. અમે દિગંબર ને શ્વેતાંબર ને સ્થાનકવાસી ને બે જૈન જ નથી. પહેલેથી એમની એ વાત છે. પરમાર્થ નો પણ એક જ છે. ચૈતન્ય તત્વને ઓળખો અને તેની સ્વાનુભૂતિ પ્રગટ કરો. ઓળખીને એકાગ્ર થાય, અથવા જે ઓળખે તે એકાગ્ર થાય. કેમ કે મહિમા આવે ને, ઓળખવાથી મહિમા આવે, એમાં એકાગ્રતા સદાય. ચૈતન્ય તત્વને ઓળખો એટલે પોતાના સ્વરૂપને ઓળખો અને તેનો સ્વાનુભવ પ્રગટ કરો. ભેદ જ્ઞાન પ્રગટ કરો, સ્વાનુભવ નિર્વિકલ્પ દશા છે, સ્વવિકલ્પ દશામાં ભેદ જ્ઞાન છે. તેમ ગુરુદેવે કહ્યું છે અને તે કરવાનું છે. ગુરુદેવે આ ફરમાયું છે, આ એમની આજ્ઞા છે, આ ઉદ્દેશ છે. જે તેઓને જે કહ્યું એનું અમલીકરણ કરવાનું છે, એનું પરિણામ કરવાનું છે. પછી સમય સાહેબ 206 ગાથા લીધી છે, નિર્જરાધિકાર છે. આમાં સદા પ્રતિબંધ બન, આમાં સદા સંતુષ્ટ ને આમાં એટલે પોતાના આત્મામાં. અત્યારે મારા દેહ ટીકામાં જ્ઞાન સંબંધિત છે, જ્ઞાનની પ્રતિક ઓર જ્ઞાનના સંતુષ્ટ થા, જ્ઞાનમાં તૃપ્ત થા. તને કોઈ વચન અગોચર સુખ અત્યારે જ થશે, ક્યારે થશે? અત્યારે જ તને સુખ થશે, પ્રેરણા આપીશું, પ્રેરણાત્મક અત્યારે જ તને સુખ થશે. ક્યારે સુખી થવું છે જીવને અભિપ્રાયમાં? ભવિષ્યમાં સુખી થવું છે કે નહીં? અત્યારથી સુખી થવું છે બધાને, કોઈને મોડું કરવું નથી. અત્યારે ભલે દુઃખી રહ્યો, પછી થોડા થોડી વાર પછી સુખી થઈશ, એવું કોઈ કે કોઈને નથી. આમાં સદા પ્રતિકર, તેમાં પ્રતિબંધ બન, તેમાં સંતુષ્ટ થા. એટલે સંતોષ તેમાં જ છે, બીજે ક્યાંય સંતોષ નથી. બીજે તો બધે અસંતોષ છે, બીજે ક્યાંય તને શાંતિ નહીં મળે. કોઈ શાંતિનું સ્થાન નથી. મકાન સારું બનાવે, નામ આપે શાંતિ નિકેતન. શું નિકેતન? એટલે રહેવાનું સ્થળ, શાંતિથી રહેવાનું સ્થળ. એમાં શાંતિ મળે? કઈ ન મળે. એ મકાનને આ મારું એવું સારું મકાન છે એવા પરિણામમાં અશાંતિનું નિમિત્ત થાય. એ મકાન શાનું નિમિત્ત થાય? અશાંતિનું નિમિત્ત. આવું સરસ મકાન મળ્યું હોય, એનું પણ આપણે જઈએ છીએ ને, બધા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જેવા છે. આવું ટેકરી ઉપર બાંધ્યું છે ને મોટું મકાન, શાંતિ મળે કે ન મળે? મારા પણ આના ભાવથી અશાંતિ ઊભી થયા વિના. અને એમાં જેટલો વધારે તીવ્ર રસ પડે એટલી વધારે અશાંતિ ઊભી થાય. નવાઈ લાગે એવી વાત ઘણાને બને છે એવી, કે બહારથી સુખી દેખાતા માણસો એને તો બધું આમદામ ને ઠામ છે, એ પરિણામમાં એને બેચીને આકૃતા આકૃતિ થયા કરતી હોય. માણસને એમ થાય આને આટલું બધું સુખ છે ને આને કેમ ફક પડતું નથી? પણ મારાપણાનો જે લોહવાર છે અંદરમાં, એનું જે રસ છે, આટલું બધું મારે ભેગું થયું, મારે આટલું બધું ભેગું થયું, મારે આટલું બધું ભેગું થયું, એને શાંતિને ખાઈ જાય છે, અશાંતિને ઉભી કરે છે. જ્યાં સુધી ભેગું નહોતું થયું ત્યાં સુધી ભેગું કરવાની અશાંતિ હતી, અને ભેગું થઈ ગયા પછી ભેગું થયાની અશાંતિ ઉભી થઈ ગઈ, ત્યાં શાંતિ નથી. શાસ્ત્રોની અંદર અતિ પરિગ્રહ અંતને દુર્ગતિનો કારણ માન્યું છે. અતિ પરિગ્રહને દુર્ગતિનું કારણ માન્યું. કરોડો અબજો થાય તો સારું કે નહીં, તે દુર્ગતિમાં જવાનું થાય, બીજું કાંઈ ન થાય. માટે એવું કદી ઈચ્છવું નહીં. અને જેની પણ કરોડો અબજો હોય ત્યાં તો આ વાત તો ક્યાંય છે નહી, એને એનું મમત્વ હોય, એના કરોડો અબજોમાં દુર્ગતિ ને જોવી, શું જોવી, એના વૈભવ ને ન જોવો, શું જોવું, આ જ્ઞાની ની દ્રષ્ટિ છે. લોકો એમ સમજે છે, ઓહો ભાઈ આને તો શું સાહેબી છે, કઈ મોટી મોટી કિંમતી ગાડીઓ, સારામાં સારા મકાન ને ફર્નિચર, કપડા દાગીના પણ બધું સારામાં સારું, શું, અને બહુ સુખી ભાઈ, બહુ સુખી. જ્ઞાની ની નજરમાં એમ છે કે વિચારો આની મમતા કરીને દુર્ગતિમાં ચાલ્યો જશે, ક્યાં જશે, દુર્ગતિમાં જશે. નાની કેવી નજરે જોવે છે જગત ને, લોકો જેને સુખી જોવે છે, નાની એને નજીકના ભવિષ્યમાં કેટલો બધો દુઃખી થશે એ જોવે છે. અત્યારે દુઃખી જ છે પાછો, પણ અત્યારે એનું દુઃખ બીજાને નથી સમજાતું, નાનીને સમજાય, પછી તો બધાને સમજાય એવું દુઃખ આવશે. એવું છે, નાની હોય ને ચક્રવર્તી હોય ને એને દુર્ગતિ નું કારણ નથી, પરિગ્રહ ની પ્રીતિ, પરિગ્રહ ઉપર નો રસ, મારા પણ એ દુર્ગતિ નું કારણ છે. સમય સારગી 206 નંબર કી ગાથા પર બેન સે થોડી બાત કર રહે હૈ કે અપને સ્વરૂપ મેં પ્રીતિ કર, અપને સ્વરૂપ મેં પ્રીતિવંત બન જા, ઉસમે સંતુષ્ટ હો, ઉસમે સંતુષ્ટ સંતોષ હૈ, ઓર કઈ જગ્યા સંતોષ નહીં હૈ. ઓર સબ જગ્યા અસંતોષ હૈ. અસંતોષ ક્યો હૈ, જીવ સુખ લેને કા ભાવ કરતા હૈ ઓર ઉસકો સુખ માં સે મિલતા નહીં. જીવ સુખ લેને કા ભાવ કરતા હૈ ઉસકો વા સુખ મિલતા નહીં, તો અસંતોષ હોતા હૈ. મિલને કી અપેક્ષા રહેવે, મિલને કી અપેક્ષા રહેવે, મિલે નહીં તો ક્યા હોવે, તો સંતોષ હોય બિના રહે નહીં. મિલે અસંતુષ્ટ પણ ચાલુ રહેતા, ઓર કહી શાંતિ નહીં નહીં મિલેગી, ઓર કહી શાંતિ નહીં મિલેગી, ઓર શાંતિ કી કલ્પના કરેગા વહાં ભી અશાંતિ મિલેગી, જ્યાં ભી શાંતિ કી કલ્પના કરેગા વહાં ભી અશાંતિ હી અશાંતિ મિલેગી. आत्मा में जो संतोष शांति आनंद है वो और कहीं नहीं है। ये आत्मा का स्वभाव है, ये गुण है। जैसे अग्नि में उष्णता है, पानी में शीतलता है, बिना कारण, इसका कोई कारण के साधन की जरूरत नहीं। ऐसे आत्मा में सुख शांति और आनंद है, वो बिना कारण है, उसमें किसी साधन की जरूरत नहीं। ये चीज मिले तो शांति होगी, ऐसे आत्मा की शांति नहीं। कोई चीज प्राप्त होने से शांति हो, ऐसी आत्मा की शांति पंगु नहीं है। पंगु को आधार चाहिए। किसको आधार चाहिए? पंगु को आधार चाहिए। आत्मा का जो गुण है, शक्ति रूप है ना, आनंद भी शक्ति है, सुख भी शक्ति है, शांति भी शक्ति है, तो पंगु नहीं है। कोई चीज के आधारित वो नहीं है। इसके कारण और साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा में जो संतोष शांति आनंद है वो और कहीं नहीं है। इससे तू तृप्त बन, अनाथी बन तू तृप्त। त्रिजु पद बीएलईटी मच पेड़ पद अनाथी बन तू तृप्त, मैंने इसमें ही तू तृप्ति को पा, इसमें ही तृप्ति को पा। उसमें तृप्ति है और कहीं जगह नहीं है। जीव के परिणाम अंतर्मुख होकर के स्वरूप का अनुभव करता है तो उसको तृप्त तृप्त दशा होती है। कैसी दशा होती है? अनंत काल में तृप्त नहीं हुआ है ऐसी तृप्ति होगी। अनंत काल में तृप्त नहीं हुआ ऐसी तृप्ति होगी, परम तृप्ति। तृप्ति के तो सवाल नहीं, सुख प्राप्त करता सुख टे।
भोगवता
शांति तृप्ति तृप्ति मिलेगी। तृप्ति का मतलब क्या होता है कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तृप्त हो गया। जैसे पानी पी लिया तृषा लगी, फिर और पानी कहीं अभी नहीं चाहिए, क्या पूरा मिल गया। फिर थोड़ी देर पीछे चाहिए, क्योंकि कभी ऐसे तृप्त होता हो ही नहीं सकता। तृप्तिपूर्ण जो भी है वो सभी आत्मा में ही है, उसमें तुझे तृप्ति मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, और कहीं नहीं मिलेगी। तृप्ति थवानुष्ठान पर अपना स्वरूप ही है, उसके अवलंबन से उसके अनुभव से तृप्ति तृप्त तृप्त दशा होती है, और कोई तृप्ति होने का कोई उपाय नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई द्रव्य नहीं, कोई भाव नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव। संसार में परिभ्रमण करने वाला आत्मा अनादि से अतृप्त दशा में दुखी है। कैसा है? अनादि से अतृप्त दशा में दुखी है। उसको जब अपना स्वरूप मिलता है तो उसको हमेश के लिए तृप्ति होने की एक परिस्थिति पैदा होती है। ऐसी तृप्त दशा हो गए उसको धर्म कहते हैं, उसको धर्म कहते हैं। धर्म कोई संप्रदाय नहीं, धर्म कोई अन्य बात नहीं है, यानी रूढ़ि रिवाज नहीं है। आत्मा को शांति और तृप्ति मिले वही धर्म है। कितना अच्छा धर्म है, धर्म कितना अच्छा है, आत्मा को तृप्ति मिले, शांति मिले। ये सभी आत्मा में ही है, उसमें से ही तुझे तृप्ति मिलेगी और कहीं कहीं से नहीं मिलेगी। अभिप्राय पूरा बदलने का है। मुमुक्षु को तो इस बात से अपना जो प्रयोजन है वो अभिप्राय बदलने का है। क्या इनको ज्ञान दशा की बात दिया है, समय साल के 200 था। मुमुक्षु का प्रयोजन का उसके संबंध क्या है कि जो अनादि का परम सुख शांति का आनंद का अभिप्राय है वो गलत अभिप्राय है, मिसकॉन्सेप्ट, उसको बदलना है। ये मुमुक्षु का प्रयोजन है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी आत्मा ही चाहिए। कोई पात्रता है, पात्रता कब है? मुझे जगत में से कुछ नहीं चाहिए। अपेक्षा वृत्ति सब बंद कर दिया और अपेक्षा का जो स्थान था वो उपेक्षा का हो गया, तभी पात्रता है। उसी वक्त पात्रता है, देर नहीं लगती। तो प्रयोजन वो है कि सुख आत्मा में है, शांति आत्मा में है, आनंद आत्मा में है, ऐसा अभिप्राय होना चाहिए। यह अभिप्राय आखा जगत से उल्टा है। पूरा जगत देखो तो वायु पदार्थ में से सुख प्राप्त करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। हमारे लोग अमेरिका में जाते हैं क्यों? सुखी होने के लिए। वहां क्या देखा हमने? सुबह 5 उठना, तैयार होकर के 7 भागना, निकलना क्या? वहां तो गाड़ी बहुत स्पीड में चलती है ना। भागने का होता है, क्या होता है? भागने का होता है। और सारे दिन बहुत काम करना और शाम को थक जाना, कितना सुखी हो गया है? ये चक्कर चलता है ना, यही चक्कर चलता
है। शाम को आकर के घर के काम करना,
घर के काम
थक कर के आता है,
घर का काम भी तो करना ही पड़ता है। नौकर मिलता नहीं, घर की सफाई खुद को करनी पड़ती है, कपड़े खुद को धोना पड़ता है, वहाँ कोई कपड़ा धोने वाली नहीं मिलती और पोसा भी नहीं, बर्तन साफ मानना रसोई करना सब काम अपने हाथ से करना होता है। जो तो औरत है वो थक जाती है तो भी काम, उसको भी काम पे जाना पड़ता है, बोले उसको क्यों काम पे जाना पड़ता है, तो अगर वो काम पे नहीं जाए तो जोर हो जाए, कोई अड़ोस पड़ोस है ही नहीं हुआ यहाँ पंचायत करने को बैठ जाए सामान नहीं मिलता,
झड़ मत लगेगी
नुकसान से भी ज्यादा खाली खाली। हमारे यहाँ तो नुकसान में भी दो पांच कुत्ते रहते हैं, वहां तो गांव में भी कुत्ता नहीं मिले और पेड़ पे पक्षी नहीं मिले, तो मनुष्य भी नहीं मिले, सब गाड़ी में जाना जाना सब, कोई पैदल चलने वाला नहीं मिले बाजार के सिवा, बाजार में सब चलते हैं। वैसे भी चले गए तो बिल्कुल स्मशान से भी ज्यादा उज्जड़, एकदम उज्जड़ लगे। वो तो औरत काम नहीं करे और बीमार हो जाए बहुत बड़ा खर्चा लगता है, तो शरीर में बीमारी तो आएगी, इंश्योरेंस लेना पड़ता है कंपलसरी। जो जॉब करता है नौकरी करने को जाता है उसका इंश्योरेंस जिस जो कंपनी में वो सर्विस करता है वो देता है और उसका रेट बहुत कम है, क्योंकि उसको होलसेल काम मिलता है ना कंपनी का, सब आदमी का इंश्योरेंस की जगह से मिलता है, और इंडिविजुअल इंश्योरेंस का बहुत बड़ा रेट है, ऐसा ही नहीं कह सकते। बहुत पड़ा है वो भी कंपनी देती है, जॉब पर तो सब जाएंगे, इसलिए घर में दोनों को काम करना पड़ता है। हमारे यहाँ घर काम औरत करती है और आदमी सो जाता है लेट जाता है, सामान नहीं चलता है, तो आदमी को भी काम करना पड़ता है, वो भी किचन में काम करता है, बर्तन साफ कर देता है, घर साफ कर देता है, हंडवारी सब नहीं करता है, वो मशीन से करता है लेकिन वो हंडवारी करता है, सफाई करता है। ये काम औरत को करना और ये काम आदमी को करना, ऐसा भेद चलता नहीं है, क्योंकि वो बोले कि मैं भी थक जाती हूँ अब हाथ बटा वरना है, काम तो नहीं होगा,
घरे मोटा मोटा काम
और गर्म गर्म खाने को मिलता नहीं खाना खाके ज्यादा बना करके फ्रिज में रख देते हैं, बिगड़े नहीं इसलिए, तो ठंडा ठंडा खाना पड़ता है, ठंडा को गर्म करके खाओ उसमें तो कोई दम होता नहीं, कितना सुख मिलता होगा, कोई सुख मिलता है। जो सुख शांति के विचार वाले हैं थोड़े कमाई करके छोड़ देते हैं, रहते नहीं, और जिसका अभिप्राय है कि इसमें सुख मिलता है वो दौड़ लगाए रखता है, उसकी दौड़ चालू रहती है। अल्प पण साता मिले तो ये सत्पुरुष का
આમાં લીધું છે ને ગાસમાં સત્પુરુષ
क्योंकि दो चीज नहीं है ना, दो चीज नहीं है ना। सुख हो उत्तम थसे, उत्तम सुख की प्राप्ति उसमें से ही होगी, कहाँ से होगी, उसमें से ही होगी। उत्तम मैंने कैसा सम्यक, उत्तम मैंने सम्यक सुख की प्राप्ति, कैसा के निराकुल सुख, निराबाध सुख, स्वतंत्र सुख, दूसरे के आधार से होने वाला
नहीं,
जिसमें अपनी प्रभुता हो ऐसा सुख, कैसा
प्रभुता,
अपनी प्रभुता हो ऐसा सुख, ऐसा सुख की प्राप्ति होगी। और जगह बाहर में सुख के व्यर्थ प्रयत्न, जावा, हिंदी में जावा बोले, क्या बोले, व्यर्थ प्रयत्न, गुजराती में जावा कैसे, जावा ना कैसे, फाफा मारे से जावा ना कैसे, हिंदी में भी कुछ होगा तो सही, जावा मस्त है,
पापा
बोलते हैं, बहुत तीव्रता से प्रयत्न करे और कुछ मिले नहीं, उसको कहते हैं कि जावा मारते हैं। कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे प्रयत्न करने से हाथ में कुछ आएगा, सारी जिंदगी आकुलता कर कर के मर जाएगा, और उस आकुलता कर कर के मरा और दुर्गति में गया, वहां भी दुखी हुआ, यहाँ भी दुखी और वहां भी दुखी, क्या बुद्धिमानी है, यहाँ भी दुख और वहां भी दुख, क्या बुद्धिमानी है, कोई बुद्धिमानी सुख आत्मा में ही है, उसमें से ही वो प्रकट होगा। आत्मा में तो सुख है क्या
है।
और जगह तो सुख है ही नहीं, मिलेगा कहां से, जहां सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहां से, और यहां तो सुख है, सुख गुण है और उसमें अनंत सुख भरा है, मौजूद है क्या,
मौजूद है,
मौजूद है, विश्वास आना
चाहिए,
रूपी चीज है, कोई रूपी चीज नहीं, एक भी ऐसी दिखती है, ऐसे दिखे कि अंगुली दिखती है, ऐसी नहीं है, अरूपी है, आत्मा अरूपी है, उसका गुण भी अरूपी है और सुख भी अरूपी है, अनुभव से मालूम पड़ता है, दिखता नहीं है, कहीं अनुभव से मालूम पड़ता है, जैसे कलर दिखता है ऐसा कोई सुख नहीं दिखेगा, तो अनुभव की चीज है, अनुभव से मालूम पड़ेगा, जैसे स्वाद अनुभव से मालूम पड़ता है, देखने से मालूम नहीं पड़ता, वैसे सुख आत्मा में ही है, बस ये अभिप्राय करना है, मुमुक्षु को क्या है ये अभिप्राय करने का है, सुख आत्मा में है और कहीं जगह मेरा सुख नहीं है, बस परिणाम उनकी दिशा बदल जाएगी। और जो उदय के कार्यों में उत्साह लेता था वो उत्साह उसका ठंडा हो जाएगा, तो आकुलता कम हो जाएगी, आकुलता कम हो जाएगी। सुख आत्मा में ही है उसमें से ही प्रकट होगा वही करने का है। आज करवानू छे बीजू करवानू मनुष्य जीवन में ऐसा निश्चय करे
जी।
क्या
निश्चय करे?
ऐसा निश्चय करे कि मेरा सुख मेरे आत्मा में है और कहीं जगह मेरा सुख नहीं है, पर वहां से मुझे मेरा सुख प्राप्त करना है वही मेरे को करना वही मुझे करना है और कुछ मुझे नहीं करना है, ऐसा निर्धार कर ले वही करने का है। सबसे पहले वो करने का है फिर वो दिखाएगी।
संसार निरुकान बन संसार निरुकान बन करवाना।
हाँ संसार की दुकान का भी संकेला हो रहा है, सब आइटम बेच करके दुकान को बंद करने का है ऐसा। और मोक्ष की नई पीढ़ी खोलने की मोक्ष मार्ग पे चलना है। वो गोथा गाथा की टीका में जो बात है ना वो बात लिया है कि जितना ज्ञान है उतना आत्मा है, बहुत सरलता से आत्मा को ग्रहण करने का यहाँ उपदेश है, सरलता से और सुगमता से आत्मा को ग्रहण करने से सुख होगा। वो तो आखिरी पर मिल गया सुख तुझे उत्तम होगा, क्योंकि संतोष तृप्ति प्रीति 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 में सुख है, संतोष में सुख है और तृप्ति में भी सुख है। तीन फैक्टर से सुख को कॉर्नर कर दिया है, कॉर्नरिंग किया है। इधर गाथा में क्या किया है आचार्य महाराज ने, कुंड आचार्य की गाथा है, अब कहते ना कि कोई चीज को चारों ओर से कॉर्नरिंग कर लेना चाहिए, घेर लेना, सुख को प्राप्त करने के लिए कॉर्नरिंग किया है। प्रीति संतोष और तृप्ति तीन बोल लिया है। ऐसा तीन बात होने से तुमको जो सुख होगा तुम बता नहीं सकेगा, ऐसा सुख होगा अवर्णनीय सुख होगा, बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो कैसे प्राप्त हो आत्मा को ग्रहण करने से? आत्मा कितना है कि जितना यह ज्ञान है उतना ही आत्मा है। देखो यह ज्ञान माने कौन सा ज्ञान? ज्ञान सामान्य। कौन सा
सामान्य?
ज्ञान सामान्य जितना है उतना ही आत्मा है। ज्ञान सामान्य और ज्ञान विशेष में क्या अंतर है? कि मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, ऐसे अनेक ज्ञेयों का जो ज्ञान होता है, अनेक चीजों का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान विशेष है, और विशेष है वो सामान्य को सामान्य से अपेक्षित है, उसमें सामान्य की सूचना साथ ही साथ है ही। जैसे बड़ा है तो छोटा को ख्याल में रख कर, ऐसे विशेष है वो सामान्य को ख्याल में रख कर की बात है। तो आत्मा में जो ज्ञो 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 ऐसा जो ज्ञान सामान्य है, जितना वो ज्ञान सामान्य है उतना ही आत्मा है। ये अध्यात्म है। क्या है? द्रव गुण पर्याय वाला द्रव्यानुयोग यहाँ बीच में नहीं डालना है, उसकी टांग अड़ानी
नहीं है।
अध्यात्म है, प्रकरण अध्यात्म का है कि जितना जो ज्ञान है उतना ही मेरा आत्मा है। इस ज्ञान को वेदन से मैं ग्रहण करूं, मेरा स्वरूप का ग्रहण हो गया, तो उसमें तृप्ति संतोष प्रीति सब खड़ा हो जाएगा, वहां सभी परिणाम उत्पन्न हो जाएंगे। बहुत टीकाकार आचार्य श्री ने बहुत सरल कर दिया है विषय, बहुत सरल किया है। श्री गुरु ने मुक्ति का मार्ग को सरल कर दिया है, दीपचंद जी अनुभव प्रकाश मलिक, श्री गुरु ने संतों ने मुक्ति का मार्ग को सरल किया है, संतों ने मुक्ति का मार्ग को सरल किया है। कैसे सरल किया कि देखो ये ज्ञान है उतना ही आत्मा है, तुमको कोई लंबे चौड़े विचार में थिंकिंग में जाने की जरूरत नहीं, अनपढ़ हो तो भी पकड़ ले, देखो ज्ञान है उतना ही आत्मा है, जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है, इससे ज्यादा आत्मा नहीं है, इससे कम भी आत्मा नहीं है। बहुत सुंदर गाथा है, कुछ अच्छा गाथा है, बहुत अच्छी गाथा है। जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है, सुना दिया है कि जितना ज्ञान है उतना ही सच्चा आत्मा है, कितना सत्य स्वरूप आत्मा का है और वही अनुभवनीय है, अनुभव करने योग्य उतना ही है, कितना ज्ञान का अनुभव। बस और कहीं अनुभव करने की चीज नहीं है, इससे तुमको सम्यक शक्ति उत्पत्ति हुई, विशेष लिया है इसी गाथा पर, थोड़ा स्पष्टीकरण बेंचर ने दिया है।